अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। मंत्र भाग की इस उपनिषद के चतुर्थ मंत्र का विचार हो रहा था। प्रथम दो मंत्रों से मुंडक उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म विद्या के संप्रदाय को बताया, परंपरा को बताया गया। ब्रह्म विद्या की परंपरा मुंडक उपनिषद के माध्यम से जो हुई शुरू, वो ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी के शिष्य हुए जो उनके ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा नाम के थे, वे अथर्वा ने अपने शिष्य अंगी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ब्रह्म विद्या प्रदान की। आचार्य अंगी ने अपने शिष्य सत्यवाह को यह विद्या दी। सत्यवाह ने अपने शिष्य अंगिरा को दी और अंगिरा से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासु बनकर सौनक गए हैं विधिवत उनके पास, और उन्हें प्रसन्न चित्त देख करके उनसे एक प्रश्न किया कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवति इति। लोक में कार्य के कारण को जानने पर कार्य कारण से अनतिरिक्त होता है, अभिन्न होता है, कार्य का कारण से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए कारण रूप से वो जाना जाता है। स्वर्ण तत्व को जानने पर स्वर्ण तत्व अपने कार्य किरीट कुंडलादि रूप से विद्यमान होने पर भी किरीट कुंडलादि का वास्तविक स्वरूप सुवर्ण ही है। इस रूप में किरीट कुंडलादि का ज्ञान होता है, वे अलग विज्ञेय नहीं होते। स्वर्ण तत्व का जिसे ज्ञान है वह किसी भी रूप में परिणत हुआ जो स्वर्ण खंड है उसे ये स्वर्ण ही है, इस रूप में जान लेता है। ऐसे संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों का कोई एक यदि कारण होगा, जैसे समस्त आभूषणों का कारणभूत एक स्वर्ण तत्व, उसे जान लिया तो सारे आभूषण सुवर्णत्वेन रूपेण ज्ञात हो जाता है। ऐसे सारे संसार के पदार्थ यदि किसी एक ही कारण से निष्पन्न हुए होंगे तब तो सारे संसार के कारणभूत एक वस्तु को जानने पर सारा संसार उस रूप से जाना जाएगा। वही एक पदार्थ संपूर्ण संसार का तत्व यानी वास्तविक स्वरूप होगा। तो इनके मन में सौनक जी के ये जिज्ञासा हुई कि सारे संसार का ऐसा कोई एक कारण है जिसको जानने से फिर कोई संसार में अलग से तत्वतः जानने योग्य नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। अरे यदि है तो कौन है, किस वस्तु को जानने से जानने वाला सर्वज्ञ होता है, तत्वतः उसका जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये प्रश्न आचार्य अंगिरा जी के प्रति जिज्ञासु सौनक जी का है। सवनक ये हैं। तीसरे मंत्र में प्रश्न, चौथे मंत्र से इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं आचार्य अंगिरा जी। अंगिरा जी ने बताया इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देने से पहले प्रश्न भले ही एक वाक्य का है लेकिन उत्तर है पूरा मुंडक उपनिषद, और इसे भी इस प्रश्न के उत्तर को अपेक्षा है क्रम की, क्रम से उत्तर देना है। एक ऐसी वस्तु बतानी है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, इसका अर्थ है कि उस वस्तु से भिन्न दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं, परमार्थ तो एक ही वस्तु है, और जो अनेक सी दिख रही है एक होती हुई भी वस्तु अनेक सा दिखना वस्तु का ये भ्रम माना जाता है। जैसे चंद्रमा एक है लेकिन भ्रांति से अनेक सा प्रतीत होता है, वह एक चंद्रमा का अनेक प्रतीत होना जैसा जैसी भ्रांति है। ऐसे मानना होगा कि जगत यानी द्वैत अनेक रूपता यह भ्रांति से प्रतीत होती है, यह भ्रांति है, और भ्रांति के लिए आवश्यक होता है तत्व का अज्ञान अविद्या। वो अविद्या दो प्रकार की, कारण अविद्या कार्य अविद्या। तो ये कह रहे हैं कि एक एक तत्वभूत वस्तु के अज्ञान से ही ये सारा द्वैत रूप प्रपंच उपस्थित होता है स्वप्न के तरह। कोई व्यक्ति जैसे रात्रि में अपने कमरे में अकेला सोया हुआ है और स्वप्न देखता है सोकर के, तो उसे स्वप्न में पूरा प्रपंच प्रतीत होता है जागृत प्रपंच के तरह ही। तो जिस समय वह जहां सोया है वहां पर स्वप्न में पूरे प्रपंच का अनुभव कर रहा है, अनेकता का अनुभव कर रहा है, उस समय भी वह उस कमरे में अकेला ही है, लेकिन दो दृष्टियां हैं, एक स्वप्न दृष्टि है एक जागृत दृष्टि है। जागृत दृष्टि से वह अकेला है, जो देख दिख रहा है स्वप्न दृष्टि से वह जागृत दृष्टि से कुछ है ही नहीं, खाली एक अकेला व्यक्ति बेड पर सोया हुआ है, ये जागृत दृष्टि है। और स्वप्न दृष्टि है वहां पूरा प्रपंच है। अब जो स्वप्न में है उसे मैं अकेला ही यहां पर हूं, मुझे छोड़कर के और दूसरा कोई है ही नहीं, इस निश्चय पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्वप्न दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। स्वप्न दृष्टि को छोड़ेगा तो वो जागृत में पहुंचते ही वो हो जाता है अकेले का निश्चय, मैं अकेला ही हूं, उसका अकेलापन स्वयं ही अभिव्यक्त होता है वहां पर, वही वही है। ऐसे वेदांत के दृष्टि में जागृत अवस्था में जो हम ये सारा प्रपंच देख रहे हैं वह अज्ञान रूपी नींद में सो करके एक दीर्घकालीन स्वप्न देख रहे हैं, ये भी स्वप्न के तरह स्वप्न ही है, और नींद के तरह नींद है अविद्या अज्ञान, और अज्ञान कौन सा? एकत्व विषय का ज्ञान, स्वरूप विषय का ज्ञान, तत्व का अज्ञान। और उस तत्व विषय को अज्ञान रूपी निद्रा से, निद्रा में सो करके ये जागृत प्रपंच रूपी स्वप्न दिख रहा है। और इसी स्वप्न में अनादिकाल से असंख्य जन्म हो रहे हैं, कई कल्प पहले बीत गए हैं, श्रुति कहती है, कई ब्रह्मा जी आए और उन एक एक कल्प तक संसार का, कल्पित संसार का साम्राज्य भोग करके फिर मुक्त हो गए। और हम तत्व का बोध प्राप्त नहीं करेंगे तो अज्ञान में ही रहेंगे, तो भविष्य में भी कई कल्पों तक यही होता रहेगा। कई दूसरे कल्प उत्पन्न होंगे और जैसे इस कल्प में व्यवस्था है ऐसी सारी व्यवस्थाएं द्वैत में चलती रहेगी। ये कब तक चलती रहेगी? जब तक मूल अविद्या अज्ञान है और कार्य अविद्या द्वैत की भ्रांति है स्वप्न में, ये सारी व्यवस्था स्वप्न के तरह चलती रहेगी। और इसे जब तक हम ये स्वप्न के तरह, स्वप्न है द्वैत, और यही हमारे दुख का कारण है द्वैत दर्शन ही। बृहदारण्यक उपनिषद बताती है कि दुख क्यों हो रहा है, तो कहते द्वितीयाद वै भयम् भवति, भय का हेतु प्रतिकूल द्वैत दर्शन है, तो दूसरा दिख रहा है इसलिए भय हो रहा है। द्वितीयाद वै भयम् भवति, और ये द्वैत दर्शन भ्रांति है, अविद्या है, इसका निश्चय कराएंगे, इसमें अनर्थ हेतुत्व का निश्चय होगा तो इसमें हेय बुद्धि होगी। जब तक ये हमारे दुख का कारण है ये निश्चय नहीं होगा, तब तक द्वैत को हटाना कोई नहीं चाहेगा। जो हमें अपेक्षित नहीं है दुख, और उसको जो बार बार उपस्थित कर रहा है, दुख का कारण बन रहा है, ये निश्चित हो जाए तो फिर व्यक्ति उस दुख के कारण को हटाने के लिए प्रयत्नशील होता है। इसलिए श्रुति में आचार्य अंगिरा जी चौथे मंत्र में शौनक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो विद्याओं की प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं हैं, वो दो विद्याएं ऐसा कौन बताते हैं? तो ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविद यानी वेदार्थ को जानने वाले बताते हैं कि दो विद्याएं हैं। वे कौन कौन है? तो एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। उनमें से अपराविद्या है द्वैत दर्शन, ये जो हमारे दुख का कारण है। अपराविद्या एक अविद्या का ही नाम है, एक प्रकार से कार्य अविद्या ये अपराविद्या है। उसे कहा गया कर्म उपासना रूप। कर्म उपासनाएं होती हैं भेद दर्शन पूर्वक। जब तक अपने आप को हम कर्ता नहीं समझेंगे, स्वर्गादि को हम अपना प्राप्तव्य नहीं मानेंगे, और स्वर्गादि के प्रापक अग्निहोत्रादि कर्मों को अपना कर्तव्य नहीं मानेंगे तब तक कर्म नहीं हो सकता। और आत्मा को श्रुति कहती है कि वह निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है। तो निष्क्रिय आत्मा में कर्तृत्व संभव नहीं है स्वतः, जब तक ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात्म्य अभिमान नहीं करता। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात्म्य अभिमान करके ही चेतन आत्मा हो जाता है कर्ता भोक्ता। इसलिए गीता ने कहा पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। ये जो तीन प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के शरीरों के अवान्तर तीन भेद किए हैं, एक सद योनि यानी उत्तम योनि, मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि शरीर उसे सद योनि कहते हैं, उसमें भी जन्म हो रहा है। इस जन्म का निमित्त अजन्मा आत्मा के देवादि के रूप में जन्म का निमित्त क्या है, तो गुणसंग, कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। अस्य शब्द से लेना आत्मा को, और आत्मा परमार्थ तो है कैसा, तो परमार्थ तो आत्मा को गीता ने बताया न जायते म्रियते वा कदाचित, वह उसका कभी भी जन्म नहीं होता, शुद्ध आत्म स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता है, और कभी वह मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु भी उसकी नहीं होती। तो जन्म मरण से रहित है शुद्ध आत्म स्वरूप, उसे कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु में अश्य शब्द से लिया गया, जिसका कभी स्वरूपतः जन्म नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता, लेकिन प्रतीति हो रही है मैं जन्म ले रहा हूं, मैं मर रहा हूं। तो मैं का तो अर्थ आत्मा ही है, और अश्य शब्द का भी अर्थ है आत्मा, और अश्य शब्द से बताया जा रहा है कि वो स्वतः जन्म मरण वाला नहीं है, और हमें प्रतीति हो रही कि मैं जन्म ले रहा हूं, मैं मर रहा हूं। तो इस प्रतीति का कारण कौन होगा, तो गीता इसका उत्तर देते हुए बताती है गुण संग, गुण यानी सत्व रज तम, ये जो प्रकृति के गुण हैं, यही इनके साथ, इन गुणों के साथ तादात्म्य संग, संग यानी संबंध हुआ जीव का, आत्मा का। तो वो उसने फिर जन्म हो रहा है गुणों का, जन्म हो रहा है गुणों का, मृत्यु भी हो रही है गुणों की, और जब इन गुणों के साथ ही तादात्म्य संबंध कर लेगा तो गुणों के जन्म को अपना जन्म समझेगा, गुणों के मृत्यु को अपनी मृत्यु समझेगा। ये शरीर भी गुण है, जो स्थूल भूत है, त्रिगुणात्मक है ना, उनमें स्थूल भूतों के तमह अंश से बन जाता है स्थूल शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर है ये भी रजोगुण और तमोगुण से ही बना है अपंचकृत पंचमहाभूतों के, इसलिए इसे भी गुण ही कहा जाएगा। जैसे सोने से बनी हुई अंगूठी सोना है, ऐसे सत्वगुण से बनी हुई ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण ये सत्वगुण है, रजोगुण से बने हुए कर्मेन्द्रिया और प्राण इन्हें रजोगुण कहा जाएगा, और यही पांच प्राण, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया और अंतकरण मन बुद्धि, इन्हें कहा जाता है सूक्ष्म शरीर के समूह को। तो ये भी रजोगुण और सत्वगुणात्मक है। ये सूक्ष्म शरीर को जीव तादात्म्य करके अपना स्वरूप समझ लेता है, उससे पहले अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जब वो है अज्ञान, मूल अज्ञान कारण शरीर उसे कहा जाता है, जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसका अज्ञान, मैं अजन्मा अमृत ब्रह्म हूं, इस प्रकार का बोध न होने से, इस स्वरूप का अज्ञान होने से आत्मा को जो रजोगुण तथा तमोगुण के परिणाम रूप बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, वही अपना तादात्म्य करके स्वरूप प्रतीत होता है। और जो सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान करता है उसे कहा गया प्रकृतिस्थ। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, उसी का परिणाम है सूक्ष्म शरीर होने से ये भी प्रकृति है। और इस प्रकृतिस्थ हो गया का मतलब प्रकृति में तादात्म्य अभिमान कर लिया। तो जब तक इन सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य अभिमान जीव का होता है तब तक उसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, कर्तापना भोक्तापना है। और भोक्ता का मतलब होता है सुख दुख का अनुभवीता। भोक्ता का स्वरूप क्या है? सुख का अनुभव करने वाला या दुख का अनुभव करने वाले का नाम है भोक्ता। सुख दुख है कर्मफल, तो कर्मफल अनुभवीता को कहा जाता है भोक्ता। तो ये पुरुष शब्दित जो आत्मा है यह कर्मफल का अनुभवीता रूप भोक्ता कैसे बना? तो कहा प्रकृतिस्थ होने से, प्रकृति में स्थित हुआ, यानी प्रकृति के परिणाम रूप सूक्ष्म शरीर में तादात्म्य अभिमान कर लिया, उसी को मैं समझने लगा तो भोक्ता बन गया। और भोगना है भोक्ता, दूसरे के कर्म का फल नहीं भोगता है अपने ही, नहीं तो अकृत अभ्यागम का प्रसंग आएगा ना। तो इसलिए वो भोक्तृत्व ये उपलक्षण है कर्तृत्व का भी। कर्ता भोक्ता बना सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान करके, कर्ता भी अपने को समझने लगा, भोक्ता भी समझने लगा। फिर किए हुए कर्म का फल केवल एक जन्म में मात्र नहीं होता, अनेकों जन्म उसे लेने पड़ते हैं किए हुए कर्म का फलोपभोग करने के लिए। वे जन्म, जन्म का स्वरूप है सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संयोग संबंध, ये है जन्म। अभी वर्तमान में मनुष्य शरीर रूपी जो स्थूल शरीर है इसके साथ जीव का जिस सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य है उस सूक्ष्म शरीर का संबंध बना। तो स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध यही जन्म माना जाता है। और हमेशा हमेशा के लिए स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग, ये मृत्यु है, ये लौकिक जन्म मृत्यु, ये इसी को कहा जाता है। और ये होता जा रहा है और ये होता ही रहेगा, क्योंकि जब तक गुणों के साथ उसका संबंध होगा। श्रुति ने कहा कि गीता ने कहा कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो फिर पुण्य कर्म का फल भोगने के लिए सत यानी उत्कृष्ट देवादि योनि में जन्म लेगा। देवादि शरीर के साथ मनुष्य शरीर से पुण्य कर्म करने वाले जीवात्मा का संसर्ग होगा, वो देवादि योनि में जन्म हुआ। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार जैसे पुण्य का फलोपभोग करके क्षय हो जाएगा तो देवादि शरीर की शरीर से जीवात्मा की मृत्यु, वहां से हमेशा के लिए वियोग होगा और फिर मृत्यु लोक में आएगा। फिर मृत्यु लोक के नागरिक के रूप में या तो मनुष्य बनेगा या तो पाप कर्म होगा तो पशु पक्षादि बनेगा। छांदों के उपनिषद में लिखा स्वर्ग से आने वाले सभी के सभी मनुष्य ही बनेंगे ऐसा नहीं है। स्वर्ग से वापस आते समय फिर स्वर्ग में जिन कर्मों का फलोभोग नहीं हुआ ऐसे जो संचित कर्म है उन संचित कर्मों में से यदि जो पुण्य कर्म है वह फलोपभोग देने के लिए प्रारब्ध बन करके आते हैं तो मृत्यु लोक में जो मध्यम योनि है मनुष्य शरीर वो बन जाता है, जो देवता था वो मनुष्य बन जाता है करके। और यदि संचितगत स्वर्ग छोड़ते समय संचितगत पाप कर्म ही फलोपभोग के लिए प्रारब्ध बन करके सामने आए फल देने के लिए, तो यहां आकर के कहा कि कुत्ता भी बन सकता है, सुकर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उन कर्मों का फल जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसे शरीर में उसका जन्म होगा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है, कुछ सिद्धांत वाले कहते हैं कि एक बार उत्कृष्ट योनि को प्राप्त कर लिया तो वो फिर ऊपर ही ऊपर की योनि को प्राप्त करता जाएगा, अधोगति नहीं होगी। लेकिन वेद तो बताता है कि अधोगति भी होगी पहले के संचित कर्म में से यदि पापात्मक कर्म फल देने के लिए सामने आते हैं तो बन जाता है वो पशु भी, देवता शरीर से सीधे पशु शरीर में भी जाता है। भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय, फिर रावण कुंभकर्ण बनकर के आते हैं, कंस बनकर के आते हैं। तो ये जय विजय का रावण कुंभकर्ण बनना कंस बनना ये उत्कर्ष है कि अधोगति है? अधोगति है। इसका अर्थ है कि ये नियम नहीं है कि जो उत्कृष्ट शरीर को प्राप्त किया तो फिर उत्तरोत्तर उसका उत्कृष्ट ही जन्म होता जाएगा, ऐसा कोई संसार में नियम नहीं है, वो कर्मानुसार होगा। तो ये कहा कि कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु, तो ये गुण है सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान, सूक्ष्म शरीर गुण है उसके साथ तादात्म्य अभिमान, ये है गुणसंग। और ये जब तक रहेगा तब तक फिर सूक्ष्म शरीर के आश्रय के रूप में भोगायतन ये स्थूल शरीर लेना ही पड़ता है कर्म के अनुसार। और इस सूक्ष्म शरीर अभिमानी जीवात्मा में कर्तृत्व अभिमान है, अपने को कर्ता जब तक समझेगा तब तक फिर शास्त्र उसे अभ्युदय के साधन के रूप में अपरा विद्या का विधान करता है। वो अपरा विद्या है अग्निहोत्रादि कर्म और सकाम उपासनाएं, जिनका फल संसार अंतपाती अभ्युदय है, उत्कर्ष है वो। लेकिन ये मोक्ष नहीं है। और यही अपरा विद्या यदि निष्काम भाव से करता है तो उनका फल भी चित्त शुद्धि तक है, चित्तगत मल विक्षेप दोष की निवृत्ति के लिए निष्काम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान करने से वो फल मिलता है। और शुद्ध चित्त जो होता है उसमें वेदांत के अधिकारी के जो विशेषण बताए हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षा, यह प्रकट होते हैं, ये सब चित्त के धर्म है, अंतकरण के धर्म है। तो अंतकरण में क्या नित्य है क्या अनित्य है इसका उदय होता है, इस विवेक ये विवेक होता है। तो अनित्य आदि दोषों से दूषित है, अपरा विद्या का जो फल बताया गया है संसार, ये नित्य नहीं है अनित्य है। और वो अनित्यतादि दिखी संसार की नित्यानित्य वस्तु विवेक जो वैराग्य का जन्मदाता बन जाता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है वैराग्य का पिता उत्पादक। किसके प्रति वैराग्य होगा, जिसमें अनित्यतादि दोष दर्शन होगा, और वह नित्यानित्य वस्तु विवेक था नचिकेता में। इसलिए यमराज जी ने पूरा संसार आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तुत किया, बिना साधन के ही, अपरा विद्या का अनुष्ठान किए बिना ही नचिकेता को कहा तुम्हें मैं ये सब दे देता हूं, जो मनुष्य शरीर से भोगा नहीं जाता, जिसका भोग करने के लिए देवादि शरीरों की आवश्यकता होती है, उन दिव्य भोगों को भी मैं प्रदान करता हूं और कल्प तक की आयु देता हूं। लेकिन नचिकेता ने इनकी नश्वरता देखी और नचिकेता ने अपना विवेक प्रकट करते हुए कहा कि शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतथ। शोभाव है ये संसार का मतलब कल भी रहेगा या नहीं रहेगा, इसका कोई निश्चय नहीं है, अनित्य है। ये नित्यानित्य वस्तु विवेक शुद्ध चित्त का चित्त में पहले होता है, और जब अनित्यत्वेन रूपेण संसार प्रतीत हुआ तो नचिकेता ने कहा कि वैराग्य संसार के प्रति ये सब आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए जो आपने प्रस्तावित किया है आप अपने पास ही रखिए, ये तवैव वाह तव नृत्य गीत है, ये सब आप अपने पास रखिए। और नित्य वस्तु मात्र एक आत्मा है, जिसे पहले नचिकेता ने कहा अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्य भव्याच्य यत्तत् पश्येषि तद्वद, जो कार्य कारण से अतीत है, कर्म तथा कर्म फल से अतीत है और काल से अपरिछिन्न है, उसे कहा जाता है नित्य, वो है आत्मा, उसे आप जानते हो और आप मुझे तो वही कहिए, मैं तो उसी को प्राप्त करना चाहता हूं। उसी का ज्ञान नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, ये आत्मज्ञान रूपी तृतीय वर को छोड़ करके दूसरा कोई वर इसके बदले में नचिकेता नहीं चाहता। तो नित्य वस्तु के वस्तु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, रूप मुमुक्षा, जिज्ञासा, ये नित्यानित्य वस्तु इसको भी जन्म देता है, खाली वैराग्य ही कराता है ऐसा नहीं। नित्यानित्य वस्तु विवेक से इच्छा भी होती है और वैराग्य भी होता है। वैराग्य होगा अनित्य वस्तु के प्रति और नित्यत्वेन निश्चित जो वस्तु है उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगी। और जब अनित्य पदार्थ है संसार तो संसार के रूपादि विषय ही हमारे इंद्रियों को और मन को अपने ओर आकर्षित करते हैं और इंद्रियां तथा मन अशांत हो जाती है, इंद्रियां भी अशांत होती है और मन भी अशांत होता है। तो जब उनके प्रति वैराग्य है तो मन शांत ही रहेगा, इसे शम कहा जाता है, और मन के सेवक माने जाते हैं बाह्य इंद्रियां। जब मन को नहीं चाहिए कुछ भी बाह्य पदार्थ, तो बाह्य पदार्थों को रूपादि को लाने के लिए चक्षुरादि को वह प्रेरित भी नहीं करेगा, इसलिए वे जहां अपने गोलक हैं वहीं पर शांत रहेगी, गोलक में स्थित रहेगी, इधर उधर घूमेगी नहीं विषयों में। तो इस प्रकार ये समाधि षट संपत्ति भी आ जाती है। इन सब के मूल में है चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि होती है अपरा विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से। इसलिए अपरा विद्या का दो प्रकार का फल हुआ, यदि सकाम भाव से करते हैं तो अभ्युदय, वो बंधन का हेतु बनेगी, और निष्काम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान होता है तो चित्त शुद्धि तक का वो फल देगी। इसलिए कहा जाता है कि कर्म से क्या होता है, तो वैराग्य तक। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक अंतकरण शुद्धि द्वारा प्राप्त होगा, तो मोह कलिल शब्दित जो अविवेक है बुद्धिस्थ वो चला जाएगा, और अविवेक के कारण ही राग द्वेष संसार में होता है। विवेक उत्पन्न होगा, अविवेक चला जाएगा, राग द्वेष का मूल, तो राग द्वेष नहीं होंगे, वैराग्य होगा। तो ये अपरा विद्या मुमुक्षु के लिए भी अपेक्षित है निष्काम भाव से अनुष्ठान करने के लिए, लेकिन कब तक, तो उसकी एक सीमा बताइए। वो सीमा है योगा रूढ़ होने से पहले तक आपके अंदर योगारोहण की इच्छा है, तो आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते, गीता ने बताया कि जब आप वेदांत के अधिकारी बनना चाहते हैं तो चित्त शुद्धि आपकी होने तक, नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य होने तक आपके लिए कारण माना जाता है कर्म ही, आपके श्रेय का। और जब वैराग्य हो जाए कर्मफल के प्रति, तब कहा जाता है आप योगारूढ़ हो गए, यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक आपके अंदर पूर्ण वैराग्य आ गया, और लौकिक फल की कोई इच्छा नहीं रही, मात्र एक अलौकिक जो मोक्ष है तद विषय ही इच्छा है, उसे ही प्राप्त करने की इच्छा है, मुक्त होने की ही इच्छा है। ऐसे अज्ञानी साधक को कहा जाता है योगारूढ़। तो उस समय फिर क्या करे, उसके लिए क्या साधन होगा, तो गीता ने कहा योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, उसके लिए तो फिर शम। उससे पहले तक ये अपरा विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान, वहां कर्म शब्द से यहां की अपरा विद्या को ही लेना, उसका अधिकारी बताया गया योग आरुरुक्षु, यानी वेदांत अधिकारी के जो साधन विशेषण बताए हैं नित्यानित्य वस्तु विवेकादि, वह प्राप्त करना चाहता है जो, उसे कहा गया योगा योग आरुरुक्षु, योगारूढ़ नहीं, दो हैं, एक योग आरुरुक्षु है और एक योगारूढ़ है। योग आरुरुक्षु है वेदांत का अधिकारी बनना चाहता है, नित्यानित्य वस्तु विवेकादि प्राप्त करना चाहता है, का मतलब अभी अशुद्धि है अंतकरण में, अविवेक है, अविवेक ये द्योतक है चित्त के अशुद्धि का। शुद्ध चित्त में विवेक होता है और इसके लिए फिर अपरा विद्या की जरूरत है। तो इसलिए वहां पर योगा योगम आरुरुक्षु शब्द से कहा गया अशुद्ध चित्त जो है, कर्म अपरा विद्या के द्वारा निवर्त्य जो दोष है चित्त में, वो दोष जिसके अंदर विद्यमान है वो कौन सा है? वो है राग द्वेष विक्षेप और अविवेक। चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक का उत्पादक बन जाती है अपरा विद्या और फिर अविवेक को हटाती है। अविवेक हट गया तो राग द्वेषादि हट जाता है, योगारूढ़ हो जाता है, विवेकी बन गया। तो फिर शमः कारणम् उच्यते, वेदांत का अधिकारी हुआ तो फिर उसे वेदांत का जो प्रयोजन है मोक्ष, उसे पाने के लिए वेदांत ने जो साधन बताया है, ज्ञानादेवतु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति, वो आत्मसाक्षात्कार। तो आत्मसाक्षात्कार के अंतरंग साधन याज्ञवल्क्य जी ने बताए हैं मैत्रेयी को, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मैत्रेयी है अमृतत्व कामा, अमृतत्व कहते हैं मोक्ष को, और वो चाहती है, मुमुक्षु है का मतलब योगारूढ़ है मैत्री, मुमुक्षा है उसके अंदर। तो योगारूढ़ के लिए साधन क्या है? कहा कि तुम्हें अपने अपेक्षित मोक्ष को यदि प्राप्त करना है तो आत्मा द्रष्टव्य, आत्मदर्शन प्राप्त कर लो, आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। कहा वो आत्मज्ञान कैसे होगा? तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा का आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का विचार करो और उन ग्रंथों के विषय का मनन करो और निधिध्यासन करो। ये श्रवण मनन निधिध्यासन को माना गया योगारूढ़ के लिए अंतरंग साधन। उसके लिए फिर श्रम की जरूरत है, यानी बाह्य उपरति की जरूरत है। बाह्य साधन तब थोड़ा उनसे उपरत होकर गए, बाह्य साधन फिर छूट ही जाएंगे, अंतरंग साधन में ज्यादा प्रवृत्ति होगी, रुचि होगी। जैसे जैसे चित्त तैयार होता है, चित्त भूमिका तैयार होती है, उत्तर उत्तर साधन में स्वयं रुचि बननी चाहिए। ये नहीं कि पहले वाला छोड़ दें और उत्तर वाले में स्थिति न बने, रुचि नहीं आ रही हो तो पहला तो छोड़ दिया और दूसरा वाला ठीक कर नहीं पा रहे हैं तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कर्म करना जरूरी है। कब कर्म छूट जाए आपसे? आम पेड़ को छोड़ता नहीं है तब तक जब तक वो पकता नहीं है, और पक जाता है तो वो अपने आप छूट जाता है, वो छोड़ता नहीं है। और यदि छोड़ देगा तो वो उपभोग योग्य नहीं होता। आम कच्ची अवस्था में ही यदि टूट करके अलग हो जाता है, कोई उसे तोड़ देता है, छोड़ देता है और वृक्ष से अलग कर देता है, तो वो कच्चेपन में खट्टा भी होता है और कड़क भी होता है। आपको चबा करके खाना पड़ेगा, उसको चबाते हैं लोग, और पके हुए आम को तो चूसते हैं, चबाते नहीं है, और वो आप सामने वाले की मधुरता को भी बढ़ाता है, रस को रुचि लेकर के खाते हैं। इसलिए कच्चे पूर्व साधन में यदि परिपक्वता नहीं है, कच्चा है, उसे छोड़ना नहीं है, पक जाता है तो अपने आप छूट जाता है, नहीं तो कहीं की भी स्थिति नहीं बनती। ये कहा गया कि त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। तो श्रुति कहती है शम करने के लिए योगारूढ़ को, जब योगारूढ़ हो जाए यानी साधन चतुष्टय संपन्न बन जाए, उसके बाद जो चित्त शुद्धि के साधन के रूप में अपनाए हुए बाह्य साधन थे कर्म यानी अपरा विद्या, उसे छोड़ दें। और तुम पदार्थ का विवेक, ये उपलक्षण है श्रवण मनन निधिध्यासन का। तो श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए श्रुति ने कहा कि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्, ऐसी श्रुति आती है, वो शम है। और यदि आलस्यादि के कारण कर्म तो छोड़ दिया और योग्यता चित्त की न होने से श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं हो रहा है, जैसे ही थोड़ा कठिन विषय वेदांत का आता है और निद्रा में पहुंच जाता है, निद्रा समाधि स्थिति में पहुंच जाता है, या मन विचलित होने लगता है, का मतलब यह है कि अंतरंग साधन में अभी स्थिति बनने की योग्यता नहीं है। तो श्रुति कहती है फिर यदि श्रवण मनन निधि ध्यासन ठीक से नहीं कर पा रहे और कर्म छोड़ दिया तो तत्त्यागी पतितो भवेत्, अपरा विद्या का अनुष्ठान न करने वाला पतित हो जाता है। पतित होने का अर्थ है निकृष्ट गति को प्राप्त करना। फिर उसे कम से कम कर्म निष्काम भाव से करता, अधिकारी बनने के लिए करता, तो उत्तर उत्तर जन्म उसके अधिकारी के रूप में प्राप्त होता है, तो मनुष्य भी नहीं बनेगा, मनुष्य से और नीचे की ओर जाएगा। इसलिए कर्म को सहसा छोड़ने की प्रेरणा नहीं देता वेदांत, लेकिन यदि अधिकारी हुए तब कर्म को छोड़ो, उससे पहले नहीं। अच्छी तरह से उत्तर साधन में रुचि बन रही है तो इसलिए ये ईशावास्योपनिषद में क्रम समुच्चय है, सर्वत्र क्रम समुच्चय। गीता ने भी ये कहा है कि पहले कर्म करो, इसलिए वहां तीन षटकों में पहले आया कर्म का प्रतिपादन छह अध्यायों में, और सात से बारहवें अध्याय तक उपासना, और तेरह से अठारहवें तक ज्ञान। ये क्रम है, वेद भी हमारा हितैषी है, हमारे अंतकरण की स्थिति देख करके हम जिस साधन का ठीक से अनुष्ठान कर सकते हैं वो साधन हमें पकड़वाता है, इसी के लिए तो वेद है। तो शौनक के प्रश्न का उत्तर देते समय शौनक अंगिरा जी दो विद्याएं बताते हैं, पहली साधनभूत विद्या अपरा विद्या और उसकी फलभूता परा विद्या। अपरा विद्या पहले इसलिए बताई जा रही है कि वो अधिकारी बनाती है, और अधिकारी होकर के ज्ञान का, ज्ञान के अंतरंग साधन में लगता है तो ठीक से उसे ज्ञान का जो फल है, ज्ञान भी प्राप्त होता है और ज्ञान का जो फल है मोक्ष वो भी प्राप्त होता है, नहीं तो शब्द ज्ञान मात्र होता है। और शब्द ज्ञान क्या करता है, वाचाल तो बनाता है किंतु समय पर धोखा देता है, नहीं अविद्या की निवृत्ति कर पाता। ज्ञान का दो फल है, हम जिन कारणों से इस संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, उन कारणों को समाप्त कर दें। वे कारण हैं अविद्या, काम, कर्म, और उनको मिटाना, इसके लिए ज्ञान चाहिए। ऐसा ज्ञान चाहिए हमें, मुक्त करने वाला ज्ञान चाहिए, न कि दूसरों के साथ मात्र चर्चा करने वाला ज्ञान, वो आचाल बनाने वाला ज्ञान कहलाता है। तो जो अनधिकारी बनकर के, वास्तविक मुमुक्षु न बनकर के वेदांत में प्रविष्ट होता है, तो वेदांत अर्थ बुद्धिमान होने से समझेगा, ज्ञान होगा, लेकिन वो ज्ञान फल परिवसायी तब तक नहीं होगा जब तक वह ठीक से पूर्व साधनों का जो फल है उससे संपन्न नहीं होगा। पूर्व साधनों का फल है बंधन की निवृत्ति। कैसे? ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधकों की निवृत्ति, वो अविद्या को, कर्म को और इच्छा को निवृत्त करने वाला जो ब्रह्म साक्षात्कार, उसकी उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है हमारे चित्त में, उनको हटाना, ये अपरा विद्या का फल है। और ऐसी फलवती अपरा विद्या का अनुष्ठान जिसके जीवन में हुआ है, उसे वेदांत के श्रवण में रुचि आएगी, उसे वेदांत अर्थ के मनन में, वेदांत अर्थ वाक्य अर्थ का निधिध्यासन करने में बड़ा आनंद आएगा। वह आनंद उसे ऐसा लगेगा कि इन साधनों से जो आनंद हमको साधनों के अनुष्ठान काल में हो रहा है, ऐसा तो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। अलौकिक आनंद साधन के समय भी आना चाहिए, साधन अनुष्ठान काल में भी। धर्म का फल तो सुख है ना, वो ये नहीं कि हमें समाप्त होने के बाद मिलेगा कभी कालांतर में। धर्म का अनुष्ठान करते समय भी उसके फल की झलक आपके चित्त में धर्म करते करते प्रतीत होनी चाहिए, और वो तब होगी। श्रवण करते समय भी वैसा आनंद आना चाहिए, मनन करते समय भी। यदि मन आपका जिस अर्थ के प्रतिपादक ग्रंथ का विचार कर रहे हो, उस अर्थाकार हो जाएगा। वो अर्थ तो आनंद स्वरूप आत्मा है ना, तो आनंदाकार मन होगा तो आनंद की झलक जरूर मिलेगी ही। मनन भी आनंद स्वरूप आत्मा का होगा तो आनंद की झलक तो मिलेगी ही ना। इसलिए लोग कहते हैं वेदांत को निरस, लेकिन वेदांत को पूछो तो वेदांत बताता है रसो वैसा, वो तो रस ही रस है वेदांत। वो तैतृय उपनिषद का वाक्य है रसो वैसा, उसमें रस ही रस भरा हुआ है, कोई ना गुठली है ना छिलका है, रस ही रस है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।